अहम बात क्या है कि वुजू तो हो गया लेकिन टूटता कैसे है। चंद अहकामात ये एक तस्कीर की खातिर हम लोग पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये अमल दिन में कई दफ़ा करने का होता है, इसलिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ज़रा सा तेज़ बोलूँगी, कोई छूट गई बात तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वुजू के अहकाम में सबसे पहली चीज़, वुजू किन चीज़ों से टूट जाता है। नंबर एक, दोनों रास्तों यानी आगे और पीछे से प्राइवेट पार्ट में खारिज होने वाली चीज़ों से, मसलन हवा, मनी, पेशाब, मजी और पखाने से, तिरमिज़ी 74। नंबर दो, गहरी नींद जिसमें इंसान होश और फहम से बेगाना हो जाए। हल्की सी नींद जो बैठकर या खड़े होकर आए, इसे वजू नहीं टूटता, तिरमिज़ी 77। तो ये जो आप क्लास में सोते हैं इससे वजू टूटता? इस कोर्स में कोई सोया आज तक? नामुमकिन है, कोई सो भी नहीं सकता। हाँ, इसमें क्या आता है, जैसे गाड़ी में बैठे नैप आ जाता है ना, झटका आ जाता है, कभी आप आंखें बंद करते हैं तो इट्स ओके। बेसिकली सोने से वजू नहीं टूटता। जब हम लेटते हैं ना तो हमारे जिस्म के सारे जोड़ ढीले हो जाते हैं, तो जिस्म से हवा खारिज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोना नवाक़े से वजू नहीं है, पर लेट कर रिलैक्स होकर सोने में हवा निकलने की वजह से टूटता है। बात वाज़े। फिर नेक्स्ट देखिए, शर्मगाह को छूने से, तिरमिज़ी 82, अबू दाऊद 181। यहाँ फिर मदर्स विद किड्स का इशू है, जो बात पीछे हमने थोड़ी सी छेड़ी थी। क्या बच्चे का डायपर चेंज करने से वजू टूट जाता है? पीछे नजस में हमने पढ़ा था कि नजस को हाथ लगाने से नहीं टूटता, बट प्राइवेट पार्ट को छूने से टूटता है, अपने को या किसी को। अब माँ बच्चे को चेंज कर रही है, अगर वाइप्स यूज़ कर रही है और सिर्फ गंदगी साफ़ हो रही है, अगर इवन हाथ को गंदगी भी लग जाए तो माँ का वजू नहीं टूटेगा, अनलेस बच्चे के प्राइवेट पार्ट को डायरेक्ट हाथ ना लग जाए। बात वाज़े। बाज़ माएँ सर्दियों में बहुत ये सवाल पूछती हैं, नॉर्वे में ख़ास तौर पे, कि बार बार वजू करना पड़ता है ऐसे। तो बहरहाल ये है कि बच्चे के जिस्म को अगर हाथ नहीं लगता तो नहीं टूटता। हाँ, बग़ैर कपड़े के अगर हाथ लग जाए किसी के भी तो फिर टूट जाएगा। अक़ल के जाते रहने और शऊर के मफकूद होने से, चाहे नींद से, जुनून, पागलपन वगैरह, या नशे या दवा से, यानी बस अक़ल चली जाए। नेक्स्ट, कुबुल या दुबुर, वही बैक एंड फ्रंट के अलावा किसी और रास्ते से पेशाब और पखाने का निकलना, यानी ये भी चीज़ इंसान के वजू के टूटने की ज़रिया बनती है। फिर गुसल वाजिब करने वाली चीज़ों से वजू टूट जाता है, मसलन जिमा, शौहर बीवी का ताल्लुक, और इसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ भी नहीं है। कहने की बात क्या हुई कि वजू करने के बाद इंसान एक ऐसी शऊर की कैफियत में आ जाता है। फिर एक और चीज़ है कि मुर्तद हो जाए, अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है तो भी उसका वजू टूट जाता है। नेक्स्ट थिंग, ऊँट का गोश्त खाने से, सही मुस्लिम 802, ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। तो लिहाजा अगर कोई पका रहा है तो उसको चाहिए कि बता दे, ताकि घर वाले को वजू की फिर कैफियत का यकीन रहे। फिर याद रखिए कि जिसे अपनी तहारत का यकीन हो लेकिन नापाक होने का शक हो जाए, तो इसे अपने यकीन पे कायम रहना चाहिए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 805 की। अब सवाल पैदा, किन चीज़ों से वजू नहीं टूटता? देखिए कितना प्यारा दीन है, प्लस माइनस में आपको चीज़ें बताता है। नंबर एक, ऊँग आने से, बीवी का बोसा लेने या महज उसे छूने से, तिरमिज़ी की रिवायत 176, मुस्लिम 476। और इसकी दलील कौन है? नबी सल्लम खुद हैं। क्या आप अपनी बीवी के साथ इस तरीके से मोहब्बत का इजहार करते हैं और बग़ैर वजू किए दोबारा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं? फिर इसी तरह हदस का महज शक होने, हदस कहते हैं गंदगी को, यानी शक हो रहा है कि हवा निकली है कि नहीं। बस दफ़ा कुछ लोगों को हर वक्त डाउट्स आते हैं, यूरिनेशन के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ऐसे शक में भी इंशाल्लाह वुजू नहीं टूटेगा। फिर नकसीर से, नाक से जो खून बहने लग जाती है कभी गर्मी की वजह से, उससे भी नहीं टूटता। फिर सींगी या पछने लगवाने से, जिसको आज के दौर में हम हिजामा या कपिंग कहते हैं, इससे भी नहीं टूटता। कह कहा लगाने से, हंसने से भी नहीं टूटता, लेकिन कह कहे कम लगाने चाहिए। याद रखिए, अपने कह कहों पर भी काबू पाना, इंशाल्लाह अल्लाह हम आपको उसकी जजा देगा। फिर आग पर पकी हुई चीज़ खाने से, बुखारी 208, यानी आप खाना खा के बैठे, काफ़ी देर खा ली, उसके बाद वो मुंह में कोई भी खाने का टेस्ट नहीं है, इट्स ओके, पानी पी लिया उसके बाद, तो वजू नहीं टूटेगा आपका इनसे। फिर महज शर्मगाह को देखने से, निगाह पड़ गई, बच्चे को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे भी वजू नहीं टूटता। फिर इसी तरह ऊँटनी का दूध पीने से, शर्मगाह के अलावा किसी और हिस्से से खून के निकलने से, या अबू दाऊद 198 है। अब सवाल पैदा होता है कि वुजू करने के दौरान कुछ काम मकरूह भी हैं, कि आप कोई काम कर लें तो पसंदीदा नहीं? तो पहली चीज़, 3 से ज़ायद बार किसी उस्व को धोना, ये इब्ने माजा की रिवायत है 422। ना पाक जगह पर बैठकर वजू कर लिया, ये भी पसंदीदा नहीं है। पानी ज़ाया किया खेलने ही लग गए, ये भी दुरुस्त नहीं है। वजू के एक से ज़्यादा मसनून आमाल को जानबूझ के तर्क कर दिया कि कोई बात नहीं, ये तो फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरह औरत के वजू से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना, आप कहेंगे ये कैसे होता है? ये तब होता था जब पानी इतना कम होता था, एक ही बर्तन से शौहर ने वजू किया है, बाद में बीवी कर रही हैं या दोनों साथ कर रहे हैं या घर में एक से ज़ायद लोग हैं, तो इस सूरत में भी ये सूरत हाल पेश आ जाती थी। सवाल पैदा होता है कि वुजू कब वाजिब है? क्या चीज़ें हैं जिसके लिए वुजू करना लाजिम है? नंबर एक, फ़र्ज़ और नफिल नमाज के लिए, सही मुस्लिम 535 इसकी दलील है। नंबर दो, बैतुल्ला का तवाफ करने के लिए। अब आप तवाफ कर रहे हैं, वुजू टूट गया, क्या करें? निकलिए, वुजू करके आइए, दोबारा जहाँ से जिस चक्कर से शुरू किया था, इवन जिस जगह से शुरू किया था, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त नहीं मौका मिला, कोई बात नहीं, दोबारा जब हरम में जाएंगे, वो जो पूरे 3 चक्कर थे वो पूरे हो गए, चौथे से शुरू कीजिए, नए सिरे से कर लीजिए, पहले ज़ाया नहीं होते। लेकिन वुजू की हालत में तवाफ़ होता है, और कुरान मजीद को बाज़ाब्ता तौर पे जब बंदा छूता है पढ़ने के लिए मुसहफ़ को, उस वक़्त भी वुजू से होना पसंदीदा है, फ़र्ज़ नहीं है, पसंदीदा है। सूरत वाक़िया 79, हालांकि ये आयत फरिश्तों के लौहे महफूज में रखे हुए इस नुस्खे को छूने के मुतल्लिक है, लेकिन आप कम अज़ कम इसको ये कह सकते हैं कि अदब का तकाजा है, जानबूझ के बेवजू कुरान को ना छुआ जाए। सख्ती नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है कि क्या चीज़ें हैं जो बगैर वजू के कर सकते हैं? ये बहुत अहम टॉपिक है इंडो पाक कल्चर के लिए, क्योंकि हमने इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं कि हम नेकी छोड़ देते हैं इसलिए कि वजू नहीं है। तो क्या चीज़ें? मुस्तहब तो है, इट्स रिकमेंडेड, पसंदीदा तो है, लेकिन अगर कोई ना कर सके तो फिर गुनाह नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नंबर एक, ज़िक्र इलाही के वक्त, अबू दाऊद की रिवायत 17 है, यानी सहाबा कराम बग़ैर वुजू की हालत में भी जिक्र कर लिया करते थे। फिर हर नमाज के वक्त, मुस्नद अहमद जिल्द 2 460, क्या पता चला कि हर नमाज के लिए नया वुजू करना शर्त नहीं है, पसंदीदा है। बहरहाल, फिर गुस्ले जुनाबत से पहले, बुखारी 248, सोने से पहले वुजू करना, बुखारी 247। किसी को हदीस याद है कि रात को सोने से पहले अगर वुजू किया जाए तो उसकी क्या फजीलत है? जी आप बताइए। हर करवट पे फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, और ताहिर सूरत में सोना फरिश्तों की दुआएं लेना है। ठीक है, ये भी उसी में अमाल ऐसे कि फरिश्ते उतरे, उसमें ये हदीस हमने डिटेल से पढ़ी थी। बहरहाल, फिर हालत जुनाबत में सोने से पहले, यानी गुसल का भी इरादा नहीं है तो सिर्फ वुजू कर लिया जाए तो ये पसंदीदा, ये बुखारी 682 है। हालत जुनाबत में खाने से पहले, मुस्लिम 305, इब्ने माजा 591। रमज़ान है, सहरी के लिए उठे, अब वक्त इतना नहीं है कि शावर ले, शावर लेते हैं तो सहरी का वक्त निकल जाएगा। तो पसंदीदा क्या है कि पहले वजू कर लीजिए, खा लीजिए, फिर गुसल करके नमाज अदा कर लें। ठीक है, फिर इसी तरह एक ही रात में दूसरी बार मुबाशरत से पहले, मुस्लिम 308 है, यानी एक शौहर अपनी बीवी से एक से ज़ायद बार अगर ख्वाहिश रखता है तो दोनों ख्वाहिशों या दोनों दफ़ा उस अमल के दरमियान में भी गुसल फ़र्ज़ नहीं है, वुजू कर ले तो पसंदीदा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैयत को उठाने की वजह से, डेड बॉडी को जो कंधा देते हैं हमारे कल्चर में कहते हैं, तो उसके लिए भी पसंदीदा तो है, बावजू होना शर्त नहीं है, तिरमिज़ी 993। फिर क़ै आने के बाद, यानी क़ै आ गई तो क्या करें? पसंदीदा के कर लें, नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह उस दर्जे की बात नहीं है, और इसकी दलील तिरमिज़ी 76। फिर नेक्स्ट, कुरान मजीद को पकड़ने के लिए मौता 419 और निसाई 57 है, जिल्द नंबर 8 में। आप देखिए कितनी बारीकियां हैं ना हमारे दीन में, तो इसका ख्याल रखना है। आज वक्त के साथ साथ जो कल्चर आता जा रहा है ना, जिसको अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसान करे, वो है आई डोंट केयर। आप बच्चों से कोई बात तो करेंगे तो आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, इट्स ओके। ये भी गंदे उचकाने का जो अंदाज़ है ना, ये तकजीब की एक इब्तदाई सूरत होती है। क्यों केयर नहीं करते? कल लोग कहेंगे आई डोंट केयर, वुजू के बगैर नमाज पढ़, इट्स ओके, अल्लाह नोज़ माई इंटेंशन, अल्लाह को मेरे दिल का पता है। कई लोग ऐसी बातें कई मौक़ों पे कहने लगते हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने दीन के मामले में जो बेसिक्स हैं उसके डिफेंडर बन जाएं, हम उसकी केयर करें, क्योंकि इसके बगैर क्या होगा, हम फिर ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ों से भी केयरलेस होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के ईमान की दलील क्या है कि शुबे में डलने वाली चीज़ों को भी छोड़ दे, हराम के डर से कि कहीं ये हराम ना हो, फिर इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब वुज़ू की बात हुई तो थोड़ी सी मसह की भी बात करनी ज़रूरी है। मसह क्या होता है और कैसे करते हैं? तो मोज़ों पे मसह करना। पहली बात है, मोज़ा किसको कहते हैं? आप कहेंगे किसको नहीं पता किसको कहते हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि इस पे भी फिक्र में दो इश्यूज़ हैं, तो समझ लीजिएगा इसको। मोज़ा कहते हैं चमड़े या किसी और चीज़ के बुने हुए कदम, इसको खफ भी कहते हैं, खुफ खाफा यानी मोज़ा कहते हैं। फिर जुराब किसको कहते हैं? कॉटन या ऊन से बने हुए को जोरब या जुराब कहते हैं। सिंपल सी मिसाल दे दूं कि हर वो कपड़े की, चमड़े की, रबड़ की, प्लास्टिक की वो चीज़ जो इंसान अपने पाँव पे पहन ले जूतों से पहले, तो उसको मोज़ा कहते हैं। कपड़े का भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, चमड़े का। आज हमारे कल्चर में मारूफ फ़िक्र हनफी जो है, लोग उस पर ही अमल करते हैं, उसमें इतना बड़ा इशू है। मैं एक ऐसी मस्जिद को जानती हूँ दुनिया में कहीं, सिर्फ इस वजह से अच्छी खासी चलती चलाती मस्जिद, जिसमें सारे अंकल्स भी आते थे, यंग लड़के भी थे, उस मस्जिद से कट कर अंकल्स ने अपनी एक और मस्जिद थोड़े से फासले पे बना ली। हुआ क्या कि यंग लड़के जो पढ़े लिखे, जो मतलब कह लीजिए कुरान सुन्नत का इल्म ले रहे थे, वो बेचारे उस मस्जिद में रह गए और अंकल्स नुमा सारे बड़े बड़े दूसरी तरफ चले। क्यों? सिर्फ एक इशू था, मोज़ों का मसा, कि जो लड़का इमाम था वो मोज़े पहन कर नमाज़ पढ़ाता है और वो मोज़ों पे मसा करता था, तो ये कहते थे कि इसका तो वुजू ही नहीं हुआ। क्यों? मोज़े वो कहते हैं सिर्फ चमड़े की जराबों को, इसको चिरमी कहते हैं, चरम चरम कहते हैं लेदर को। तो बहरहाल हम इतनी सख्ती में नहीं पढ़ते हैं, ना इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्या मोज़ों पे मसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और वुजू की सूरत में मोज़ों पर मसा किया जाता है। बुखारी 206 है। सवाल पैदा होता है कि मोज़ों पर मसा करने की मिकदार क्या है, कब तक? ये भी सवाल थोड़ा सा समझने का है, यानी इसको अगर आपकी शीट में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा कि मोज़ों पर मसा करने के जवाज़ की क्या शरायत है। क्वेश्चन नंबर एक, मोज़े वुज़ू की हालत में पहने हो, क्वेश्चन है ये। तहारत के बाद पहने, पाँव भी धोया, बुखारी 206 इसकी दलील है। फिर मोज़े पाँव के इन हिस्सों को छुपाते हों जिनका धोना वुज़ू में फ़र्ज़ है, और ये कहाँ तक होते हैं? अबव द एंकल। फिर मोज़े इतने मोटे हों कि इनके नीचे से पाँव का चमड़ा नज़र ना आता हो, क्या कहते हैं हम उसको? स्टॉकिंग्स, पतली सी। आजकल लेडीज़ ने पूरी पूरी टांगों पे पहनी हो तो पता भी नहीं चलता कि वो कुछ है, स्टॉकिंग नहीं। बाकी पतली स्किन, ब्राउन, ब्लैक, कोई सॉक्स जिससे सब छुप जाए, उसके ऊपर मसा हो सकता है। दोनों मोज़े पाक चीज़ से बने हों, यानी हराम मटेरियल से ना बने हों, और दोनों मोज़े दुरुस्त हो, यानी एक मोज़ा पहनना है एक नहीं पहनना तो भी नहीं होगा, दोनों मोज़े पहनना शर्त है। अब सवाल पैदा होता है कि मोज़ों पर मसा करने की मिकदार क्या है। तो मोज़ों पर मसा करने के लिए दोनों पाँव की उंगलियों से लेकर पिंडली के ऊपर तक का हिस्सा शामिल है, यानी जहाँ तक भी जाता है। किया कैसे जाए, ये भी बहुत सवाल है। कई लोग पूरे पाँव के ऊपर हाथ फेर रहे होते हैं, जैसे जैसे पानी फेरने की बात है। और यहाँ मुझे हज़रत अली का वो कॉल याद आ रहा है, जो आप नोट कर सकते हैं इसका तरीका देखने से पहले। कहा करते थे कि अगर दीन में अक़ल का दखल होता, अक़ल का, कि आई विल डू वट एवर आई थिंक इट्स गुड, तो फिर पाँव का मसा ऊपर की बजाय नीचे से होता। आपने मोज़े पहनने में, आप यहाँ से बाहर जाती हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, उम्मीद क्या है कि आपके सॉक्स के नीचे कुछ लगेगा? तो जब आप अगली नमाज से पहले मसा करें तो आपको नीचे हाथ फेर लेना चाहिए ना, नीचे नहीं फेरते, समझे? ये हाथ नहीं पाँव है, ऐसे पानी लिया और ये तीन उंगलियों से ऐसे एक दफ़ा, दैट्स इट। ऊपर की टॉप पे हाथ, पूरे पाँव को रगड़ना मरोड़ना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फिर इसी तरह से मोज़ों पर मसा करने के लिए अफसल है कि दाएं को मुकद्दम किए बगैर दोनों पर एक ही साथ मसा किया जाए, यानी दोनों हाथों से इकट्ठे दोनों पे भी किया जा सकता है। दोनों हाथों की खुली हुई उंगली से दोनों पाँव की उंगलियों से लेकर पिंडली के ऊपर तक मसा किया जाए। मोज़ों के निचले हिस्से या पीछे वाले हिस्से का मसा करना सुन्नत नहीं है, और चमड़े के मोज़ों का धोना मकरूह है, और एक बार से ज़ायद मसा करना भी मकरूह है। चलिए ये तो छोड़िए, क्या पगड़ी, तो हम तो पहनते नहीं, तो क्या पगड़ी पर मसा किया जा सकता है? जो कुछ कल्चर ऐसे हैं, ख़ासतौर पे पेशावर में और कुछ देहातों में, बहुत बड़ी कई गज़ लंबा कपड़ा होता है, उसको लपेटी जाते हैं और फिर सर के ऊपर रखते हैं, तो पगड़ी पर मसा जायज़ है मगर शरायत के साथ। अबू दाऊद 147 और तिरमिज़ी 100 इसकी दलील है। आप ना पगड़ी पहनते हैं ना आपको उसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए इसको छोड़ दें, लेकिन आपको इसकी फ़िक्र होनी चाहिए स्काफ की। क्या आप स्काफ जो हैं उसके लिए करते हैं पहले पगड़ी को देखिए, शराइत क्या है। तहारत सुगरा यानी वुजू के लिए मसह किया जा रहा हो, यानी जुनाबत नहीं, गुसल नहीं, वुजू के लिए, तो फिर पगड़ी के ऊपर मसह हो सकता है। तहारत पानी से हासिल की जा रही हो, सर के उस हिस्से को छुपाए हुए हो जिसे आमतौर पर पगड़ी से छुपाया जाता है, और पगड़ी पहनने वाला मर्द हो, क्योंकि ये औरत के लिबास का हिस्सा नहीं है। वैसे अभी तक फैशन में पगड़ियाँ क्यों नहीं आई, आज आ गई हैं। मुबारक हो आपको, आपने मर्दों के बराबर कंधे से कंधा मिला लिया। ये मर्द कब दुपट्टे लेंगे? वो भी आ गए, मैं जा रही हूँ, आप मुझे ऐसी बुरी बुरी खबरें सुना रहे हैं। धूला घरारा पहनने लगे, यानी आप देखें। और कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन है इस पे? देर इज एनी ऑब्जेक्शन? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। और उस मर्द पे और उस औरत पे अल्लाह के नबी की तरफ से जो वईद है वो मैं मुंह से लेना नहीं चाहती। रहमत से दूरी कह लीजिए कम से कम, कि जो औरत मर्द की तशबीह करे और मर्द औरत की तशबीह करे। तो कल दुपट्टे क्या साड़ियाँ भी बांधेंगे और जो भी करेंगे, और नुमाया होने के शौक में कुछ भी कर लें। सुन्नत में इतनी ताकत नहीं है हमसे मनवा सके जो फैशन में है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। पगड़ी के अक्सर हिस्से का मसा करना ज़रूरी है। अब आगे आपका मेरा इशू स्काफ का, क्या स्काफ या दुपट्टे या चादर पर मसा किया जा सकता है? तो इसके लिए नोट कीजिएगा, इस पर क्या तरीक़ेकार है। आमतौर पे देखिए कि हमने अब जो स्काफ इतना मुश्किल बना लिया, 10-10 पिन्ने लगाकर, उसको इतने बल देकर, और दोबारा वो पहन ही नहीं सकते, तो ये एक किस्म का फिर अपने ऊपर मुश्किल डालना है। सीधी सी बात क्या है कि स्काफ या दुपट्टे को खोला जाएगा, सिंपल सी बात है, खोला जाएगा। अब जैसे इस वक्त आप सब ने स्काफ्स लिए हैं, और अगर आप जोहर की नमाज के लिए वुजू करेंगे स्काफ उतरेगा, बस सीधी सी बात है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं। क्वेश्चन क्या है कि पगड़ी पे क्यों हो जाता है? तो पगड़ी की दलील मौजूद है, और साथ ही आपको तय कि मर्दों का है हिस्सा। सहाबियात दुपट्टे लेती थी ना अल्लाह के नबी के दौर में, खिमार भी थी, चादर भी थी, उसकी कोई दलील नहीं है। तो लिहाजा अगर हम आज इतना सा भी छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो फिर आप ये बताइए कि कल अल्लाह के बड़े हुक्म कहाँ से मानेंगे। ठीक है, तो लिहाजा इसको हल्का सा ढीला करें, करेंगे बाज़ लोग कहते हैं बाहर है, ओपन में, हरम है, दुपट्टा ढीला कीजिए, मुंह के आगे घूंघट की तरह करके, अंदर हाथ करके पलटाइए, और उसके बाद दोबारा जब मौका मिले उसको टाइट कर लीजिए। इतनी सी बात है। फिर उसके बाद मसह की मुद्दत कितनी है, ये अहम सवाल है। मसह की मुद्दत मुकीम, जैसे अब आजकल आप और मैं इधर रुक रहे हैं, बैठे हुए हैं इसी शहर में हैं, तो एक दिन और एक रात, यानी 24 आवर्स कह लीजिए, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है। लेकिन शर्त यह है कि कसर की मुसाफत का सफ़र हो। मुस्लिम 639, क्या पता चला मुसाफिर 3 दिन तक मसा कर सकता है। सफ़र होते थे चारे घोड़ों पे, ऊँटों पे जाते थे, सहराओं में पानी भी नहीं था, तो मसे की इजाज़त थी। इसी तरह जिस शख्स ने सफ़र में मसा किया फिर मुकीम हो गया, या मुकीम होते हुए मसा किया फिर सफ़र किया, तो इसके बारे में क्या होगा? सफ़र किया या मसे की इब्तिदा के बारे में शक हो तो मुकीम की तरह मसा करेगा, यानी 3 दिन के अंदर घर आ गए तो फिर खोल कर पाँव धो लेंगे और फिर मसा करेंगे। फिर उसके बाद एक और सवाल है, अल्लाह ना करे किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, कभी कोई ज़ख्म आ जाता है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया, चोट लग गई, पट्टी बांधनी पड़ती है, तो क्या पट्टी पर मसा हो सकता है? तो पट्टी पर मसा किया जा सकता है, ख्वाह हड्डी जोड़ने के लिए लकड़ियाँ बांध कर की जाए या सादा पट्टी हो। दलील इब्ने माजा 657 है, नबी सल्लम के दौर में एक सहाबी ज़ख्मी हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी, वुजू का मसला उठा, तो आपने उसे कहा कि अपनी पट्टी के ऊपर मसा कर लो। फिर पट्टी पर मसा करने की शरायत क्या है कि बिला मकसद ना बांधी हो, बच्चों की तरह इधर से खून निकलने वाला है इसको पट्टी बांधो। कुछ बच्चों को बड़ा शौक होता है पट्टियाँ बांधने का ना, तो एक बच्चा था तो वो पट्टी लेके आ गया, पुप्पो पुप्पो इस पे पट्टी बांध दे, किधर खून निकलने वाला है, यानी है तो नहीं था तो निकलने वाला है ना। तो किसे की बात क्या है कि पट्टी मजबूरन बांधी जाएगी, फिर पट्टी की जगह पर ही बस मसा होगा, यानी कि अब सारे ही जगह पे आप कहेंगे वजू की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह पट्टी पर मसा करने और बाकी अज़ा को ऊपर तले धोया जाए, अबू दाऊद 336। पट्टी पर मसह के लिए पट्टी बांधने से पहले बावजू होना ज़रूरी नहीं, ऑफ कोर्स जब चोट लगी तो पता तो नहीं था चोट लगेगी, और ना ही कोई मुद्दत की शर्त है, यानी जब तक फिर डॉक्टर के मुताबिक उसके ऊपर करना होगा। तो ये चंद चीज़ें थी आपके लिए मसह से मुतल्लिक।